पत्थर की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर गिरती उनकी पदचाप गुफा की अनंत गहराइयों में किसी रहस्यमय संगीत की तरह गूंज रही थी। हर एक सांस उस ठंडी हवा में विलीन हो रही थी, मानो गुफा स्वयं उनके अस्तित्व को सोख रही हो। मुख्य आचार्य के ठीक पीछे चल रहे दो अन्य वरिष्ठ आचार्यों की आंखों में एक अजीब सी कश्मकश थी, चिंता और संदेह का एक घातक मिश्रण। उनकी मंजी हुई दृष्टि गुफा के हर अंधेरे कोने को चीरने का प्रयास कर रही थी। सजग रहें, मुख्य आचार्य का स्वर गंभीर और वज्र के समान भारी था। उनके शब्द गुफा की दीवारों से टकराकर बार बार प्रतिध्वनित हो रहे थे। ये स्थान साधारण पाषाणों से निर्मित नहीं है। इस गुरुकुल का प्रत्येक शिलाखंड, यहाँ की हर एक परछाई, शताब्दियों से दबे अनकहे रहस्यों की प्रेरी है। एक भी विचलित कदम, एक छोटी सी असावधानी हमारे विनाश का कारण बन सकती है। कुछ ही दूरी पर अंधकार के आगोश में छिपा अर्जुन एक शिकारी की भांति उनकी हर हलचल को ताड़ रहा था। उसका हृदय वेग से धड़क रहा था, किंतु उसका शरीर किसी प्रतिमा की भांति स्थिर था। उसे आभास था कि आज की रात साधारण नहीं है। आज रात गुरुकुल के इतिहास की उन परतों से पर्दा हटने वाला था जिन्हें समय ने भी भुला दिया था। उसे पता था कि नियति ने उसे एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां उसे किसी एक महान रहस्य का आलिंगन करना ही होगा। गुफा के भीतर से आती बर्फीली हवाओं के झोंके शरीर में सिहरन पैदा कर रहे थे। दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन अंक और रहस्यमय मंत्र हल्की नीली आभा उत्सर्जित कर रहे थे, जो गुफा की सुप्त शक्तियों के जागृत होने का प्रमाण थे। अर्जुन ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को संयमित किया और छाया की तरह बिना किसी आहट के आचार्यों के पीछे खिसकने लगा। यहीं कहीं उस काली छाया ने इस पवित्र स्थान में अनाधिकार प्रवेश किया है, मुख्य आचार्य ने फुसफुसाते हुए कहा, किंतु उनके स्वर में एक अनकहा भय भी छिपा था। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह केवल एक गुफा में नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास के भीतर है। यहाँ हजारों वर्षों की साधना और प्रतिबंधित ज्ञान को सुरक्षित रखा गया था, ऐसा कुछ जिसे आज तक न तो किसी जिज्ञासु साधक ने देखा था और न ही किसी आधुनिक आचार्य ने स्पर्श किया था। और आज वह अनचाहे ही सही उस निषिद्ध सत्य का हिस्सा बनने जा रहा था। अंडिस्को, जैसे जैसे वे गुफा की गहराइयों में उतर रहे थे, प्रकाश कम और रहस्य गहरा होता जा रहा था। गुफा के भीतर की हवा अब केवल ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक प्राचीन भारीपन था, जैसे सदियों का इतिहास हवा के कणों में जम गया हो। मुख्य आचार्य के नेतृत्व में तीनों आचार्यों के कदम अब और भी धीमे हो गए थे। उनकी आंखों में कौतूहल से अधिक एक गहरा संदेह था। अर्जुन, जो एक अदृश्य परछाई की तरह उनके पीछे चल रहा था, अपनी हर सांस को नियंत्रित कर रहा था। उसके पैर जमीन को इस तरह छू रहे थे मानो वह हवा पर चल रहा हो, न कोई आहट, न कोई कंपन। अचानक मुख्य आचार्य एक विशाल शिलाखंड के पास ठिठक गए। उनके हाथ की मशाल की रोशनी जब दीवार पर पड़ी तो वहां उकेरे गए प्राचीन सुरक्षा मंत्र थरथरा रहे थे। असंभव, मुख्य आचार्य के स्वर में पहली बार विस्मय की एक लहर उठी। ये सुरक्षा कवच, ये तो ऋषियों की तपस्या से अभिमंत्रित था। इसे भंग करना किसी भी जीवित साधक की सामर्थ्य से परे होना चाहिए था। अर्जुन ने अपनी ओर से देखा, दीवारों पर उकेरे गए वे सुनहरे प्रतीक जो कभी गुफा की अखंडता की रक्षा करते थे, अब धुंधले पड़ चुके थे। उनकी चमक फीकी थी और उनके बीच से काली धारियां फूट रही थी, जैसे किसी जहरीली बेल ने उन्हें जकड़ लिया हो। ये केवल शक्ति का ह्रास नहीं था, यह एक सोची समझी विनाशकारी कला का प्रदर्शन था। सावधान रहो, मुख्य आचार्य ने फुसफुसाते हुए अपने साथियों को संकेत दिया। ये जाल केवल शक्ति से नहीं तोड़ा गया है, बल्कि इसे अंदर से खोखला किया गया है। इसका अर्थ है कि हमारा शत्रु केवल बलवान नहीं बल्कि हमारे तंत्र विद्या के रहस्यों का ज्ञाता भी है। अर्जुन ने अपने भीतर की चेतना को और अधिक फैलाया। उसे महसूस हुआ कि गुफा की दीवारों से एक अजीब सी गुनगुनाहट आ रही है, जैसे पत्थर रो रहे हों। उसने देखा कि हवा में तैरते हुए ऊर्जा के कण किसी एक दिशा की ओर खींचे जा रहे थे। गुफा के अंदर एक अजीब तरह की रोशनी झिलमिला रही थी। कभी कभी दूर किसी कोने में हल्की नीली चमक दिखाई देती जो मानो अपने अस्तित्व का संकेत देकर तुरंत लुप्त हो जाती। अर्जुन ने अपने अवचेतन कौशल का उपयोग करते हुए उस सूक्ष्म आभा को पकड़ने की कोशिश की। हर बार जब मुख्य आचार्य और उनके साथी किसी द्वार या दरार की ओर मुड़ते, अर्जुन बिजली की गति से किसी स्तंभ या पत्थर की ओट में ओझल हो जाता। उसकी नजरें उन टूटे हुए मंत्रों पर टिकी थीं। उसने मन ही मन सोचा, ये सुरक्षा कवच सदियों से अटूट था, इसे कोई साधारण साधक हिला भी नहीं सकता। यदि यह टूट गया है तो इसका अर्थ है कि इस गुफा में वह साधक बहुत शक्तिशाली होगा। मुख्य आचार्य ने आगे बढ़ते हुए कहा, ध्यान रहे, कोई भी साधक यदि वह मानसिक रूप से तैयार न हो तो इन रहस्यों के सामने अपने विवेक को खो सकता है। यहाँ की हवा भ्रम पैदा करती है। अर्जुन के होठों पर एक क्षणभंगुर मुस्कान आई। वह जानता था कि आज उसे न केवल अपने शारीरिक कौशल बल्कि अपने चक्रों की शुद्ध ऊर्जा का भी परीक्षण करना होगा। गुरुकुल की प्रत्येक छाया, प्रत्येक प्राचीन सुरंग और दीवारों पर उकेरा गया हर एक प्रतीक आज उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही वे गुफा की मुख्य शाखा के मुहाने पर पहुंचे, अर्जुन की सांसें थम गईं। सामने दीवारों पर उकेरे हुए प्रतीक अब केवल चित्र नहीं थे, वे प्रकाश के साथ एक हल्की सी भिनभिनाहट पैदा कर रहे थे। यह एक चेतावनी थी, एक ऐसी सीमा जिसे पार करने का अर्थ था अपनी आत्मा को दांव पर लगाना। अंडिस्को, जैसे ही मुख्य आचार्य और वरिष्ठ आचार्यों ने गुफा के उस अंतिम और सबसे सुरक्षित मार्ग में प्रवेश किया, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। ये वह स्थान था जहां सदियों से किसी भी साधक के चरण नहीं पड़े थे। मार्ग के अंत में एक विशालकाय प्राचीन पत्थर का द्वार खड़ा था, जिसकी सतह पर उकेरे गए रक्षक चिन्ह खंडित हो चुके थे। द्वार आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे बलपूर्वक झटके से ढकेल दिया हो। द्वार के भीतर का दृश्य देख आचार्यों की सांसें थम गईं। सामने एक विशाल गुहा थी, जिसके मध्य में एक अलौकिक नीली आभा वाला तालाब विस्तृत था। पानी इतना स्थिर था कि वह किसी दर्पण की भांति चमक रहा था। तालाब के ठीक बीचों बीच जल की सतह से थोड़ा ऊपर पत्थर का एक विशाल मंच था, जो खिले हुए ब्रह्मकमल के आकार में तराशा गया था। उस मंच पर एक आकृति विराजमान थी, एक काले नकाब में लिपटा साधक। वह बिल्कुल स्थिर था, जैसे पत्थर की कोई मूर्ति हो। उसके चारों ओर संस्कृत के दैवीय मंत्रों की एक घूमती हुई आभा प्रवाहित हो रही थी, जो हवा में ही नीले और बैंगनी प्रकाश की लकीरें खींच रही थी। साधक के सामने एक ग्रंथ खुला रखा था। उसे देखते ही मुख्य आचार्य के चेहरे का रंग उड़ गया। नागवज्र तंत्र ग्रंथ। आचार्य के स्वर में भय और क्रोध का मिश्रण था। पुस्तकालय की सबसे निषिद्ध विद्या, तो यह चोर तुम हो। वह ग्रंथ साधारण नहीं था। उसके पृष्ठों से ऊर्जा की सूक्ष्म धाराएं निकल रही थीं, जो आसपास के वातावरण से शक्ति को सोखकर स्वयं में समाहित कर रही थीं। मंत्रों की गूंज हवा में एक कंपन पैदा कर रही थी, जो सीधे आत्मा को झकझोर रही थी। मुख्य आचार्य की आंखों में प्रचंड क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने गर्जना करते हुए आदेश दिया, इस अपवित्र अनुष्ठान को अभी रोको। यदि यह मंत्र पूरा हो गया तो इस शक्ति को नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। इसे किसी भी मूल्य पर पूर्ण नहीं होने देना है। मुख्य आचार्य के संकेत पर दोनों वरिष्ठ आचार्यों ने युद्ध की मुद्रा धारण कर ली। उन्होंने एक साथ अपने सातों चक्रों की सुप्त शक्तियों को जागृत किया। एक क्षण के भीतर ही गुफा का अंधकार सात अलग अलग रंगों की दिव्य आभाओं से भर गया। उनके शरीरों से निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि तालाब का शांत जल थरथराने लगा और हवा में बिजली की सी कड़वाहट दौड़ गई। दोनों आचार्य बिना एक पल गंवाए उस साधक की ओर झपटे। वे तालाब के पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे मानो वह पत्थर की ठोस जमीन हो। यह उनकी उच्च स्तर की जल स्तंभन विद्या का प्रमाण था। जैसे ही वे मंच के करीब पहुंचे, उस नकाबपोष साधक ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई मानवीय भाव नहीं था, केवल एक शून्य था। उसने एक हाथ हवा में लहराया और उसकी आभा से निकली एक काली तरंग ने आचार्यों के पहले प्रहार को बीच हवा में ही काट दिया। उधर मुख्य आचार्य अपनी आयु और अनुभव का परिचय देते हुए सीधे उस ग्रंथ की ओर बढ़ने लगे। उनकी रणनीति स्पष्ट थी, साधक को उलझाकर ग्रंथ को बंद करना। गुरुकुल के पूर्वजों ने इस खतरे को सदियों पहले भांप लिया था, इसीलिए उन्होंने इस परम शक्तिशाली ग्रंथ को दो भागों में विभाजित किया था, ताकि कोई भी इसे पूर्णता में प्राप्त न कर सके। लेकिन इस साधक की एकाग्रता और शक्ति को देखकर लग रहा था कि वह उस अधूरेपन को भी अपनी साधना से भरने की क्षमता रखता है। मुख्य आचार्य ने अचानक अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और उनके हाथों से शुद्ध श्वेत प्रकाश की एक किरण फूटी, जो सीधे साधक की ओर बढ़ी। तुम्हारी धृष्टता का अंत आज यहीं होगा। मुख्य आचार्य का स्वर गुफा की दीवारों को हिला रहा था, लेकिन नकाबपोश साधक विचलित नहीं हुआ। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और एक अदृश्य सुरक्षा कवच निर्मित कर लिया। जब मुख्य आचार्य की शक्ति उस कवच से टकराई तो एक भयानक गूंज हुई, जिससे तालाब में ऊंची लहरें उठने लगीं। अर्जुन, जो द्वार की ओट में छिपकर यह सब देख रहा था, दंग रह गया। उसने अपनी आंखों से तीन महान आचार्यों को एक अकेले शत्रु के सामने संघर्ष करते देखा। उसके मन में एक गहरा संदेह उपजा, ये साधक कौन है? इसकी शैली आचार्यों जैसी ही है, परंतु इसकी ऊर्जा में एक प्राचीन और आदिम प्रतिशोध की महक है। अर्जुन ने ध्यान दिया कि मंत्रों की गति अब और भी तीव्र हो गई थी। ग्रंथ के पन्ने फड़फड़ा रहे थे, मानो वे किसी महान शक्ति के मुक्त होने का इंतजार कर रहे हों। उसने मन ही मन सोचा, रणनीति और दूरदर्शिता महान थी, लेकिन जब शक्ति असीमित हो तो केवल सुरक्षा जाल काम नहीं आते। यहाँ कुछ और करना होगा। मुख्य आचार्य का संघर्ष अब भीषण हो चला था। जल आभा और मंत्रों का ऐसा युद्ध अर्जुन ने पहले कई बार देखा था। पूरी गुफा एक रणभूमि बन चुकी थी, जहां प्राचीन मर्यादा और प्रतिबंधित लालसा के बीच युद्ध छिड़ा था। अंडस्को गुफा के भीतर का दृश्य अब किसी प्रलयकारी स्वप्न जैसा था। तालाब का वह शांत जल अब उबलने लगा था और हवा में गूंजते मंत्रों ने एक ऐसा दबाव पैदा कर दिया था कि साधारण मनुष्य के कान के पर्दे फट जाएं। मुख्य आचार्य और उनके दो वरिष्ठ साथी अब अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों वरिष्ठ आचार्यों ने अपने शरीरों के चारों ओर सप्त चक्र कवच जागृत कर लिया था। उनकी देह से फूटती सात रंगों की रश्मियां अंधेरी गुफा को चीर रही थीं। वे जल की सतह पर बिजली की गति से दौड़ते हुए नकाबपोश साधक पर तीनों तरफ से आक्रमण कर रहे थे। वज्र मुष्टि प्रहार। एक आचार्य ने चिल्लाकर अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। उनके प्रहार से वायु के दबाव की एक ऐसी तरंग निकली, जो सीधे साधक के सीने की ओर बढ़ी। नकाबपोश साधक ने न तो अपना स्थान छोड़ा और न ही अपनी मुद्रा बदली। उसने केवल अपनी उंगलियों को एक विशेष कोण पर मोड़ा। उसके चारों ओर घूमती काली आभा अचानक एक ढाल में बदल गई। जब आचार्यों की संयुक्त शक्ति उस ढाल से टकराई तो एक भीषण गर्जना हुई, कड़ाक जैसे आसमान से बिजली जमीन पर आ गिरी हो। शक्तियों की इस टक्कर से उत्पन्न लहरों ने तालाब के पानी को मंच से 10 फीट ऊपर उछाल दिया। अर्जुन, जो अब तक केवल एक दर्शक था, ने देखा कि पानी की प्रत्येक बूंद हवा में ही जम गई थी। यह आचार्यों के प्राण ऊर्जा का प्रभाव था। मुख्य आचार्य, जो इस युद्ध के असली रणनीतिकार थे, समझ गए कि सीधे प्रहार इस साधक का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। वह साधक अत्यंत चालाकी से उनकी शक्ति का उपयोग ही उनके विरुद्ध कर रहा था। वह केवल उन्हीं प्रहारों को रोक रहा था जो उसके प्राणों के लिए घातक थे, बाकी को वह अपनी देह के लचीलेपन से हवा में विलीन कर दे रहा था। यह कोई साधारण साधक नहीं है, मुख्य आचार्य ने मन ही मन सोचा। इसकी गति और प्रतिक्रिया का समय मानवीय सीमाओं से परे है। उन्होंने अचानक अपना हाथ ऊपर उठाया और हवा में एक जटिल मुद्रा बनाई, अग्नि स्तंभन। अचानक तालाब के ठंडे पानी के बीच से अग्नि की लपटें निकलने लगी। ये दृश्य अकल्पनीय था, जल और अग्नि का एक साथ अस्तित्व। मुख्य आचार्य ने इस अग्नि को एक जाल की तरह फैला दिया ताकि साधक और उस निषिद्ध ग्रंथ के बीच एक अवरोध पैदा हो सके। उनका एकमात्र लक्ष्य अब उस नागवज्र तंत्र ग्रंथ को बंद करना था। दूसरी ओर अर्जुन की नजरें उस साधक की सूक्ष्म गतिविधियों पर टिकी थीं। उसने गौर किया कि हर बार जब आचार्य प्रहार करते, साधक की आभा में एक क्षणिक कंपन होता था। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि तीन तीन महान आचार्यों के सम्मिलित आक्रमण के बावजूद वह नकाबपोश साधक अविजित खड़ा था। उसकी काली आभा अब और भी सघन हो गई थी और ग्रंथ के ऊपर घूमते हुए मंत्र अब रक्त की तरह लाल चमकने लगे थे। ये संकेत था कि अनुष्ठान अपनी पूर्णता के अंतिम चरण में है, इसे अभी रोकना होगा। मुख्य आचार्य का स्वर गुफा की छत से टकराकर गूंजा, आचार्यों अपनी अंतिम सीमा तक जाओ, यदि यह ग्रंथ पूर्ण हो गया तो गुरुकुल की बलि चढ़ जाएगी। तीनों आचार्यों ने एक अंतिम हताश प्रयास किया। उन्होंने अपनी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित किया और एक संयुक्त आभा बाण का निर्माण किया। प्रकाश का वह पुंज इतना तीव्र था कि अर्जुन को अपनी आंखें मीचनी पड़ी। वह बाण सीधे साधक के हृदय की ओर बढ़ा, परंतु नकाबपोश साधक ने पहली बार अपनी शांत मुद्रा तोड़ी। उसने एक भयानक अट्टहास किया और ग्रंथ को हवा में ऊपर उछाल दिया। ग्रंथ के चारों ओर घूमती ऊर्जा ने उस विशाल बाण को सोख लिया, जैसे कोई भूखा अजगर शिकार को निगल जाता है। रणनीति विफल हो रही थी और शक्ति कम पड़ रही थी। गुफा की दीवारें अब दरकने लगी थीं, पत्थरों के टुकड़े ऊपर से गिरने लगे थे। अर्जुन ने अपनी हथेलियां कसी, उसे पता था कि अब उसे सामने आना ही होगा। उसके भीतर एक ऐसी अग्नि सुलग रही थी जिसे उसने अब तक दुनिया से छिपा कर रखा था, स्वर्गीय काली अग्नि। अंडिस्को गुफा की छत से गिरते पत्थरों और उफनते जल के बीच स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। मुख्य आचार्य के आदेश पर तीनों आचार्य अपनी अंतिम ऊर्जा झोंक रहे थे, लेकिन वह नकाबपोश साधक किसी अभेद्य किले की तरह अडिग था। मंत्रों की गति अब इतनी तीव्र थी कि वे प्रकाश की एक ठोस दीवार की तरह ग्रंथ के चारों ओर घूम रहे थे। अर्जुन अंधेरे में खड़ा ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि पारंपरिक मंत्र और 7 चक्रों की सात्विक ऊर्जा इस अंधकार में शक्ति को नहीं रोक पाएगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मूलाधार चक्र की गहराई में गोता लगाया। वहां एक शांत लेकिन प्रचंड ऊर्जा सोई हुई थी, स्वर्गीय काली अग्नि। जैसे ही उसने उस ऊर्जा को स्पर्श किया, अर्जुन के पूरे शरीर की धमनियों में काला प्रकाश दौड़ने लगा। उसकी हथेलियों में एक ऐसी तपन पैदा हुई जो गुफा की बर्फीली हवा को भी जला सकती थी। अब और नहीं, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए अपने हाथों से एक जटिल मुद्रा बनाई। तालाब के बीच नकाबपोश साधक ने जैसे ही ग्रंथ के अंतिम मंत्र को पूर्ण करने के लिए हाथ उठाया, अचानक पूरी गुफा का तापमान गिर गया। एक ऐसी ठंडक फैली जो हड्डियों को सुन्न कर दे, और फिर अंधेरे के सबसे गहरे कोने से एक काला कमल प्रकट हुआ। ये कमल सुंदर था लेकिन भयावह भी। इसकी पंखुड़ियां शुद्ध अंधकार से बनी थीं और उनके किनारों पर स्वर्गीय काली अग्नि की लपटें नाच रही थीं। अर्जुन ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति से उस कमल को ग्रंथ की ओर निर्देशित किया। यह क्या है, एक वरिष्ठ आचार्य चिल्लाए जब उन्होंने उस काली आभा को युद्ध के मैदान को चीरते हुए देखा। नकाबपोश साधक ने पहली बार अपनी सतर्कता खोई, उसे खतरे का आभास हुआ। उसने तुरंत ग्रंथ को उठाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मुख्य आचार्य ने अवसर पकड़ लिया। इसे यहीं रोको, आचार्य ने चिल्लाकर अपनी पूरी शक्ति से साधक का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही वह आभा में काला कमल ग्रंथ से टकराया, एक क्षण के लिए पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया और फिर एक प्रचंड विस्फोट। धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज पाताल तक महसूस की जा सकती थी। वह काली अग्नि नागवज्र तंत्र ग्रंथ के पन्नों में समा गई। मंत्रों की नीली आभा और अर्जुन की काली अग्नि के बीच एक भयानक घर्षण हुआ। देखते ही देखते उस निषिद्ध ग्रंथ के पन्ने हवा में बिखर कर जलने लगे। वे राख नहीं बन रहे थे, बल्कि शून्य में विलीन हो रहे थे। साधक ने ये देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। अर्जुन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। धमाके से उठी धूल और धुएं का फायदा उठाकर वह तुरंत पीछे हटा और अंधेरे की परतों में गायब होने लगा। उसे पता था कि उसने अपनी पहचान उजागर करने का जोखिम उठाया है। धुआं छटने लगा। मुख्य आचार्य और अन्य दोनों आचार्य हांफ रहे थे। ग्रंथ नष्ट हो चुका था, लेकिन आचार्यों का ध्यान शत्रु से अधिक उस स्थान पर था जहां से वह काला कमल आया था। मुख्य आचार्य की तीक्ष्ण दृष्टि ने धूल के बीच एक धुंधली परछाई को पीछे हटते देखा। उन्हें उस व्यक्ति का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उन्हें वह विशिष्ट ऊर्जा बखूबी याद थी। काली अग्नि, स्वर्गीय काली अग्नि, मुख्य आचार्य के मन में एक बिजली सी कौंधी। उन्हें तुरंत वीरेंद्र और अर्जुन के बीच हुए उस पुराने युद्ध की याद आई, जहां उन्होंने पहली बार इस दुर्लभ और प्रतिबंधित ऊर्जा का एक अंश देखा था। आचार्य के मन की कड़ियां एक एक करके जुड़ने लगीं। जो रहस्य अब तक धुंधला था, वह अब स्पष्ट हो रहा था। उन्होंने अपने साथियों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर जीत की खुशी थी, लेकिन मुख्य आचार्य की आंखों में एक नया और गहरा प्रश्न था। क्या वह वास्तव में वही था? उन्होंने मन ही मन सोचा। अर्जुन गुफा से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस ले रहा था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आत्मा जागृत थी। उसे पता था कि आज रात जो हुआ, उसने उसे केवल आचार्यों की नजर में ही नहीं, बल्कि उस रहस्यमय नकाबपोश साधक की नफरत की सूची में भी सबसे ऊपर ला खड़ा किया है। अंडस्को गुफा के भीतर हुए उस भीषण धमाके के बाद अर्जुन ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह जानता था कि आचार्यों की पैनी दृष्टि से ओझल रहना ही उसकी सुरक्षा की एकमात्र गारंटी है। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह सुप्त कर लिया और एक छाया की तरह गुफा के संकरे रास्तों से बाहर निकल आया। बाहर की ताजी और ठंडी हवा ने उसके फेफड़ों में नई जान फूंक दी। रात का तीसरा पहर था। गुरुकुल की विशाल इमारतें चांदनी में किसी सोए हुए दैत्य की भांति लग रही थीं। अर्जुन अपने निवास कक्ष की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम मखमली घास पर बिना किसी आहट के पड़ रहे थे। वह सोच रहा था कि आज का संकट टल गया है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे चेतावनी दे रही थी कि यह केवल एक तूफान से पहले की शांति है। अभी वह अपने कक्ष के द्वार तक पहुंचा ही था कि अचानक दिशाएं कांप उठी। शुरुआत एक हल्की सी गड़गड़ाहट से हुई, जो धरती की अगाध गहराइयों से आ रही थी। अगले ही पल वह गड़गड़ाहट एक कान फोड़ देने वाली गर्जना में बदल गई। पूरा गुरुकुल किसी खिलौने की तरह हिलने लगा। अर्जुन ने तुरंत अपना संतुलन बनाया और पास के एक नक्काशीदार स्तंभ को मजबूती से थाम लिया। यह कोई सामान्य भूकंप नहीं है, अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी नजरें पुस्तकालय की ओर उठी। वहां का दृश्य भयावह था। पुस्तकालय के ठीक सामने वाला विशाल प्रशिक्षण मैदान, जहां हजारों साधक वर्षों से अभ्यास करते आ रहे थे, वह बीच से फटने लगा था। जमीन के भीतर से उठती हुई धूल और धुएं ने चांद की रोशनी को ढक लिया। देखते ही देखते वह पूरा मैदान पाताल की ओर धंसने लगा, मानो धरती ने अपना मुंह खोल दिया हो। मिट्टी और पत्थरों के गिरने की भयानक आवाजों के बीच उस गहरे गड्ढे से एक काली रोशनी ऊपर की ओर फटी। धूल के उस बवंडर को चीरते हुए वही काला नकाबपोश साधक ऊपर की ओर उछला। लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके पीछे पीछे मुख्य आचार्य और दोनों वरिष्ठ आचार्य भी वायु मार्ग से ऊपर आए। उनके शरीरों से निकलने वाली आभा अब युद्ध की चरम सीमा पर थी। उनके वस्त्र धूल से भरे थे और चेहरे पर थकावट के बावजूद एक अटूट संकल्प था। आचार्यों ने हवा में ही एक दूसरे को संकेत दिया। उन्होंने बिना भूमि पर पैर रखे ही अपनी ऊर्जा को जागृत किया। पूरा वातावरण विद्युत के कणों से भर गया। अर्जुन ने देखा कि पुस्तकालय की ऊंची दीवारों से टकराकर भूकंप की लहरें शांत होने लगी थी, लेकिन असली युद्ध अब धरती पर नहीं बल्कि आकाश के सीने पर शुरू होने वाला था। अंडस्को मैदान के धंसते ही जो धूल का गुबार उठा, उसने पूरे गुरुकुल को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन उस धुंध के ऊपर, खुले आसमान के नीचे, एक ऐसा युद्ध छिड़ा जो केवल किंवदंतियों में सुना जाता था। मुख्य आचार्य और दोनों वरिष्ठ आचार्यों ने भूमि का मोह त्याग दिया था। वे अपनी प्राणवायु को नियंत्रित कर हवा के झोंकों पर इस तरह सवार थे मानो उनके अदृश्य पंख निकल आए हों। दूसरी ओर काला साधक किसी प्रेत की भांति शून्य में स्थिर खड़ा था। उसकी काली आभा रात के अंधकार को और भी घना बना रही थी। इसे घेर लो, मुख्य आचार्य की गर्जना बादलों की गड़गड़ाहट से भी तेज थी। आदेश मिलते ही दोनों वरिष्ठ आचार्य बिजली की कौंध की तरह दो अलग अलग दिशाओं में फैले। उन्होंने हवा में ही अपनी उंगलियों से एक जटिल ज्यामितीय आकार बनाया। अगले ही क्षण आकाश में वायु चक्र व्यूह का निर्माण हुआ। हवा के प्रचंड बवंडर ने काले साधक को चारों ओर से जकड़ लिया। ये हवा इतनी नुकीली थी कि वह लोहे को भी काट सकती थी। अब तड़ित प्रहार, तीनों आचार्यों ने एक साथ अपने हाथों को आसमान की ओर उठाया। बादलों ने जैसे उनके आह्वान का उत्तर दिया। नीले और सफेद रंग की कड़कती हुई बिजलियां आचार्यों की उंगलियों के पोरों से फूटकर सीधे काले साधक की ओर बढ़ी। वह दृश्य ऐसा था मानो आसमान से कोई दिव्य जाल उस पर गिरा दिया गया हो। आचार्यों की गति इतनी तीव्र थी कि साधारण विद्यार्थी की आंखें उन्हें मुश्किल से पकड़ पा रही थी, लेकिन अर्जुन ने देख पा रहा था। वे एक पल यहां होते तो अगले पल शत्रु के पीछे। बिजली के उन लगातार हमलों ने हवा में एक नीली रोशनी भर दी थी, जिससे पूरा गुरुकुल रोशनी से चमक उठा। बिजली की यह रफ्तार और वायु का यह चक्रव्यूह, अर्जुन ने अपने निवास की खिड़की से देखते हुए धीमे से कहा। आचार्यों ने अपनी पूरी संचित ऊर्जा इस हमले में झोंक दी है। काले साधक पर हमले की बौछार हो रही थी। बिजलियां उसकी ढाल से टकराकर कड़क कड़क की आवाज के साथ चारों ओर बिखर रही थी। आचार्यों की रणनीति स्पष्ट थी, वे साधक को हिलने का मौका नहीं देना चाहते थे। उनकी गति इतनी बढ़ गई थी कि आकाश में केवल प्रकाश की तीन लकीरें दिखाई दे रही थी जो एक केंद्र पर बार बार प्रहार कर रही थी। हवा का दबाव इतना बढ़ गया था कि गुरुकुल की छतों के खपरेल उड़ने लगे थे। आचार्यों का ये तालमेल अद्भुत था, एक हमला करता तो दूसरा उसकी रक्षा करता और तीसरा शत्रु की अगली चाल को भांपने की कोशिश करता। उन्हें विश्वास था कि इस वायु चक्र और तड़ित के सम्मिलित प्रहार के सामने कोई भी जीवित प्राणी टिक नहीं सकता। लेकिन अर्जुन, जो ऊर्जा की सूक्ष्मताओं को देख सकता था, उसने गौर किया कि वह काला साधक डरा हुआ नहीं था। वह उन बिजली के हमलों के बीच भी अविचल था, जैसे वह केवल सही समय का इंतजार कर रहा हो। उसकी स्थिरता आचार्यों के प्रचंड वेग के सामने डरावनी थी। आकाश में ऊर्जा का एक भयानक भंवर बन चुका था और ठीक उसी समय काले साधक ने अपने हाथों की गति बदली। अर्जुन को आभास हुआ कि अब इस आकाशीय युद्ध का पासा पलटने वाला है। आकाश में बिजली और वायु का वह तांडव अपने चरम पर था। आचार्यों को लग रहा था कि उनका तड़ित प्रहार शत्रु को भस्म कर देगा, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने युद्ध के नियमों को ही बदल दिया। काले साधक ने अपने लबादे के भीतर से एक छोटी नक्काशीदार धातु की वस्तु निकाली। उसने एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया और अचानक उसकी मुट्ठी से एक ऐसी स्वर्णिम ज्वाला फूटी जिसने आचार्यों की नीली बिजलियों को किसी तिनके की तरह सोख लिया। दिव्यास्त्र, मुख्य आचार्य के स्वर में घोर विस्मय और भय था। साधक ने उस दिव्यास्त्र को सक्रिय किया। एक पल के लिए पूरा आकाश सफेद हो गया, जैसे सूरज धरती के अत्यंत निकट आ गया हो। उस अस्त्र से निकलने वाली ऊर्जा इतनी पवित्र और प्रचंड थी कि आचार्यों का बनाया हुआ वायु चक्र व्यूह कांच की तरह बिखर गया। आचार्यों की सात्विक आभा, जिसे उन्होंने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया था, उस दिव्यास्त्र के तेज के सामने धुएं की तरह उड़ने लगी। अब मेरी बारी है, साधक का स्वर किसी पाताल लोक की गूंज जैसा था। उसने दिव्यास्त्र से एक सूक्ष्म प्रहार किया। वह हमला बिजली जैसा नहीं था, बल्कि प्रकाश की गति से निकली एक अदृश्य तरंग थी। मुख्य आचार्य और दोनों वरिष्ठ आचार्यों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वह तरंग उनके रक्षा कवचों को चीरती हुई उनके शरीरों से टकराए। हवा में चीखें गूंज उठी। आचार्यों के अभिमंत्रित वस्त्र चिथड़े होकर हवा में बिखर गए। उनके शरीर पर गहरे घाव उभरे, जिनसे रक्त नहीं बल्कि उनकी प्राण ऊर्जा रिसने लगी। वे तीनों पत्थर की मूर्तियों की तरह आसमान से नीचे की ओर गिरने लगे। उनके शरीर लहूलुहान थे और उनकी आंखें चेतना खो रही थीं। काला साधक अब एक निर्दयी यमराज की तरह हवा में तैरता हुआ उनके पास पहुंचा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, वह अपने दिव्यास्त्र से अंतिम और प्राणघातक प्रहार करने ही वाला था। गुरुकुल के तीनों स्तंभ आज ढहने वाले थे। परंतु ठीक उसी क्षण उत्तर दिशा से आकाश का सीना फट गया। एक प्रचंड गर्जना हुई और नीले प्रकाश की एक ऐसी लकीर आई जो साधक के दिव्यास्त्र से ठीक उस समय टकराई जब वह प्रहार करने वाला था। कड़ाक धूम, वह टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा गुरुकुल, उसकी इमारतें और आसपास के पहाड़ किसी भूकंप की तरह हिल उठे। उस टकराव से जो ऊर्जा निकली, उसने आसमान के बादलों को मीलों दूर तक खदेड़ दिया। एक विशाल कंपन पैदा हुआ, जिसे इस राज्य की सीमाओं तक महसूस किया गया होगा। अर्जुन ने खिड़की से देखा, उसकी आंखों में चमक थी। ये हमला किसी साधारण साधक का नहीं था, ये राज्य के महाराज द्वारा भेजा गया एक जवाबी दिव्यास्त्र था। प्रकाश के उस पुंज के पीछे बादलों को चीरते हुए महाराज के अंगरक्षकों और सैनिकों का एक विशाल बेड़ा दिखाई देने लगा। उनके सुनहरे कवच और हाथ में चमकते राजकीय चिन्ह इस बात का प्रमाण थे कि सहायता पहुंच चुकी है। आचार्यों के गिरते हुए शरीरों को महाराज के सैनिकों ने हवा में ही थाम लिया। अर्जुन दंग रह गया, उसने अपनी मुठियां कसी। उसके मन में युद्ध की विभीषिका से अधिक एक प्रश्न कौंध रहा था, महाराज के पास इस स्तर का दिव्यास्त्र और उस साधक के पास भी, क्या ये अस्त्र अब इतने साधारण हो गए हैं? आकाश में धूल और रोशनी का गुबार अभी भी बना हुआ था, लेकिन युद्ध का पलड़ा अब बदल चुका था। उस दिव्य टक्कर के बाद वातावरण में ओजोन की तीखी गंध और ऊर्जा का अवशिष्ट तैर रहा था। काले साधक का अंतिम प्रहार विफल हो चुका था। उसने अपनी धधकती आंखों से उन सैनिकों की ओर देखा जो बादलों को चीरते हुए नीचे उतर रहे थे। वे महाराज के गरुड़ वाहिनी के विशिष्ट सैनिक थे, जिनके हाथों में शाही मुहर वाले धनुष और ढाल थे। तो महाराज ने अपने गुप्त शस्त्रागार के द्वार खोल ही दिए, काला साधक घृणा से बुदबुदाया। सैनिकों के सेनापति ने हवा में ही अपनी तलवार लहराए और गर्जना की, अनाचारी, राज्य की सीमा में दिव्यास्त्र का प्रयोग राजद्रोह है, आत्मसमर्पण करो। काला साधक एक ठंडी हंसी हंसा। उसने जान लिया था कि अब यहां रुकना आत्मघाती होगा। उसने अपनी कमर से एक प्राचीन ताम्र टोकन निकाला। उस पर उकेरे गए चिन्हों में एक क्षण के लिए रक्त जैसी लाल चमक उभरी। अर्जुन ने अपनी खिड़की से देखा कि साधक ने उस टोकन को अपनी उंगलियों के बीच पूरी ताकत से मसल दिया। अगले ही पल एक शून्य पैदा हुआ और वह साधक प्रकाश की एक महीन लकीर बनकर वहीं से गायब हो गया। उसके पीछे केवल जलने की एक गंध और टूटी हुई उम्मीदें रह गईं। मैदान में अब शांति छाने लगी थी। घायल आचार्यों को सैनिकों ने सुरक्षित भूमि पर उतारा। गुरुकुल के अन्य साधक अपने कमरों से बाहर निकल आए थे, लेकिन अर्जुन अभी भी अपनी खिड़की से सटा खड़ा था। उसकी नजरें उस स्थान पर टिकी थीं जहां दोनों दिव्यास्त्र टकराए थे। उसके मन में एक गहरा तूफान चल रहा था। वह अपने पिछले जन्म की यादों के महासागर में डूबने लगा। ये कैसे संभव है, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। मेरे पिछले जन्म में एक अग्नि अस्त्र या वरुण अस्त्र का आह्वान करने के लिए वर्षों की कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य और गुरु की विशेष कृपा की आवश्यकता होती थी। दिव्यास्त्र देवताओं के अंश माने जाते थे, जिन्हें सिद्ध करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ, उसने अपनी मुठियां कसी, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नकाबपोश चोर और राज्य के सैनिक इतनी आसानी से उन अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे जैसे वे साधारण तलवारें हों। क्या समय इतना बदल गया है कि अब योग्यता की जगह केवल तकनीक और टोकन ने ले ली है, या फिर इस युग में इन अस्त्रों का कोई ऐसा स्रोत खोज लिया गया है जो साधना के नियमों को नहीं मानता। अर्जुन को याद था कि उसके पिछले जीवन में एक भी दिव्यास्त्र का चलना पूरे आर्यावर्त के लिए शोक या महायुद्ध की सूचना होता था, पर आज गुरुकुल की एक छोटी सी मुठभेड़ में इनका उपयोग किसी खिलौने की तरह हुआ। उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी वह समझ रहा था। यहाँ की शक्तियों के नियम अलग थे और शायद उसके पिछले जन्म का ज्ञान यहाँ अधूरा या पुराना पड़ चुका था। उसने आसमान की ओर देखा जहाँ अब भोर की पहली किरण फूट रही थी। महाराज के सैनिक आचार्यों को प्राथमिक उपचार दे रहे थे। अर्जुन जानता था कि अब मुख्य आचार्य की नजरें उस पर और भी गहरी होंगी, क्योंकि वह स्वर्गीय काली अग्नि ही थी जिसने उस भीषण चक्र को तोड़ने की शुरुआत की थी। उसे अपनी पहचान और अपनी शक्तियों को इस नई दुनिया के सांचे में ढालना होगा, इससे पहले कि वह खुद इस दिव्यास्त्रों की दौड़ में कुचल दिया जाए।